जय राधा माधव जय कुंज बिहारी राधा माधव जय कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ जय गिरीवर धारी गोपी जन वल्लभ जय गिरीवर धारी यशोदा नंदन जय ब्रज जन रंजन जय यशोदा नंदन जय ब्रज जन रंजन जय जमुना तीर वनचारी जय कुंज विहारी जय जमुना तीर वनचारी जय कुंज विहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ जय गिरिवर धारी यशोदानंदन जय ब्रज जन रंजन जय यशोदानंदन जय ब्रज जन रंजन जय जमुना तीर हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण हरे राम हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधा मदन गोपाल राधा मदन गोपाल जय राधे जय राधे जय राधे जय श्री राधे जय गौरनिता 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 जय निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल जय श्री हरि नाम संकीर्तन की। श्री श्री राधा मदन गोपाल ललिता विशाखा देवी की, श्री श्री निताय गौर चंद्र की, ग्रंथराज श्रीमद भगवद गीता की, शिल प्रभुपाद की, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, निताय गौर प्रेमानंदे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानांजनशलाकाय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीरूपां साग्रजातां सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनाः सहितं कृष्णचैतन्यदेवं। श्री राधा कृष्ण पदा सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधुर जगतपते गोवेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणामामि हरि प्रिये। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे।
भगवद गीता यथारूप चौथा अध्याय। श्री भगवान उवाच इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवान अहमव्ययम् विवस्वान मनवे प्राह मनुरिक्ष्वा कवे ब्रवीत् एवं परंपरा प्राप्तं इमं राजर्षयो विदुः सकालेनेहमहता योगो नष्ट परं तव स एवायं मया तेभ्य योग प्रोक्त पुरातन भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यं येतदुत्तमम्। अर्जुन उवाच अपरं भगतो जन्म परं जन्म विवस्वता कथं येतद्विजानीया त्वमादौ प्रोक्तवानिति। श्री भगवान उवाच बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन ता अन्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेद परन्तप अजो विसन् अव्ययात्मा भूतानामीश्वरो विसन् प्रकृतिं स्वामधीशाय सम्भवाम्यात्ममायया यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनाय सम्भवामि युगे युगे जन्म कर्म च मे दिव्यम् एवं योगेति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म मैति मामेति सोऽर्जुन वीतरागभयक्रोधा मन्मया मामुपाश्रिता बहवो ज्ञान तपसा पूता मद्भावमागता ये यथा मां प्रपद्यन्ते तां सथैव भजाम्यहं मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः कांक्षन्तः कर्मणां सिद्धि देवता क्षिप्रं हिमांशे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्म विभागश तस्य कर्तारं नाम विद्यकर्तारं अव्ययम् न मां कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा इति मां यो विजानाति कर्म भिर्न सबध्यते एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वैः पूर्वतरं कृतं किं कर्म किमकर्मेति कवयोऽप्यत्र मोहिता तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्षसे शुभा कर्मणो यदि बोद्धव्यं बोद्धव्यं च विकर्मण अकर्मणश्च बोद्धव्यं घनाकर्मणो गति कर्मण्यकर्म यः पश्येत् कर्मणि च कर्म यः स बुद्धिमान् मनुष्येषु संयुक्त कृष्णकर्मकृत् यस्य सर्वे समारम्भा कामसङ्कल्पवर्जिता ध्यानाग्निदग्धकर्माणम् तमाहु पण्डितं बुधा त्यक्त्वा कर्मफलासङ्ग नित्यतृप्तो निराश्रय कर्मण्यभिप्रवृत्तो वि नैव किञ्चित् करोति स निराशीर्यत चित्तात्मा त्यक्तः सर्वपरिग्रह शारीरं केवलं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषं यदृच्छलाभसन्तुष्टो द्वन्द्वातीतो विमत्सर समसिद्धावसिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते गतसङ्गस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थितचेतस यज्ञायाचरतः कर्म समग्रं प्रविलीयते ब्रह्मार्पणं ब्रह्म हवे ब्रह्मानो ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्मकर्म समाधिना दैवमेवापरे यज्ञं योगिनः पर्युपासते ब्रह्माग्नावपरे यज्ञं यज्ञेनैवोपजुह्वति श्रोत्रादीनिन्द्रियाणन्ये संयमाग्निषु जुह्वति शब्दादीन्विषयानन्य इन्द्रियाग्निषु जुह्वति सर्वाणीन्द्रियकर्माणि प्राणकर्माणि चापरे आत्मसंयमयोगाग्नौ जुह्वति ज्ञानदीपिके द्रव्ययज्ञास्तपोयज्ञ योगयज्ञास्तथा परे स्वाध्याय ज्ञानयज्ञाश्च यतयः संशितव्रता अपाने जुह्वति प्राणं प्राणे पानं दधा परे प्राणापानगतिरुद्ध्वा प्राणायामपरायण अपरे नियताहारा प्राणान् प्राणेषु जुह्वति सर्वेप्येते यज्ञविदो यज्ञक्षपितकल्मष यज्ञशिष्टामृतभुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम् नायं लोकोऽस्य यज्ञस्य उतोऽन्यः कुरु सत्तम एवं बहुविधा यज्ञ वितता ब्रह्मणो मुखे कर्मजान् विधितान् सर्वान् एवं ज्ञात्वा विमोक्षसे श्रेयान् द्रव्यमयाद् यज्ञात् ज्ञानयज्ञः परन्तप सर्वं कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेशन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः यज्ञात्वा न पुनर्मोह एवं यास्यसि पाण्डव येन भूतान्यशेषाणि द्रक्षस्यात्मन्यथो मयि अभिचेत् असि पापेभ्य सर्वेभ्य पापकृत्तम सर्वं यानप्लवे नैव वृजिनं सन्तरिष्यसि यथैधांसि समिद्धोऽग्निरस्मसात् कुरुतेऽर्जुन ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि अस्मसात् कुरुते तथा न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रम् इह विद्यते तत्स्वयं योगसंसिद्ध कालेनात्मनि विन्दति श्रद्धावाल्लभते ज्ञानम् तत्परसंयतेन्द्रिय ध्यानम् लब्ध्वा परां शान्तिम् अचिरेणाधिगच्छति अज्ञश्चाश्रद्धधानश्च संशयात्मा विनश्यति नायं लोकोऽस्ति न परो न सुखं संशयात्मनः योगसंन्यस्तकर्माणम् ज्ञानसञ्छिन्न संशयम् आत्मबन्धम् न कर्माणि निबध्नन्ति धनञ्जय तस्मात् अज्ञानसम्भूतम् हृतस्थम् ज्ञानसिनात्मनम् चित्वैनम् संशयम् योगम् आदिष्टो तिष्ठ भारत हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायाः योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे
हरे कृष्णा। जो भी भक्तों ने अपने मोबाइल फोन लाए हो कृपया उसको आप बंद कर दो ताकि वो लेक्चर में डिस्टर्ब न करे। और जो भी माताएं अपने छोटे बच्चों को लाई है उनको अनुरोध है कि बच्चे जो है ये जो बुक स्टॉल का एरिया है वहां पे बैठ के बहुत बात करते हैं तो लेक्चर में डिस्टर्ब होता है। तो जो भी माताओं के बच्चे है उनको हम अनुरोध करते हैं कृपया आप उन बच्चों को संभाले ताकि वो लेक्चर में बाधा न दे। और अगर किसी को बाहर बैठना है तो FM 108 चालू है तो उसको सुन के भी आप बाहर बैठ सकते हैं। हरे कृष्ण
हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है हमारे आज के गीतामृत कार्यक्रम में। चौथा अध्याय और नौवा श्लोक इस अध्याय का सुप्रसिद्ध और पूरे गीता का ये सुप्रसिद्ध श्लोक जिसका 20वां भाग आज हम लेंगे। जन्म कर्म च मे दिव्यम् एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। जन्म कर्म च मे दिव्यम् एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। जन्म कर्म च मे दिव्यम् एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। श्रील प्रभुपाद का अनुवाद इस प्रकार से है, हे अर्जुन, जो मेरे जन्म तथा कर्मों की दिव्य प्रकृति को तत्वतः जानता है वह इस शरीर को छोड़ने पर इस भौतिक संसार में पुनः जन्म नहीं लेता, अभी तो मेरे सनातन धाम को प्राप्त होता है। तो भगवान श्री कृष्ण के जन्म की दिव्यता के ये पांच पहलू, जिनके वर्णन में भगवान को कैसे प्राप्त किया जाए, इनके जो 12 मुद्दे हैं उसमें से आखिरी मुद्दे पर हम हैं। और हम हमारे कई बुधवारों से हमारे वेदों में जो उपदेश दिए गए हैं और उनके साथ साथ एक संस्कृति जिसका हमें पालन करना है, ये दोनों का ब्लूप्रिंट जो हमारे वेदों में दिया गया है, इसकी हम चर्चा कर रहे हैं। वैदिक वर्सेस मॉडर्न कल्चर, कॉन्फ्लिक्टिंग इज अ मॉडर्न कल्चर, कॉम्प्लीमेंटिंग इज अ वैदिक कल्चर। और जो कॉन्सेप्ट्स हैं, जो सिद्धांत हैं दोनों के, तो वो हमने प्रारंभ किए टेम्पररी वर्सेस यूजलेस, चाइल्ड मैरिज वर्सेस चाइल्ड प्रेगनेंसी, एग्रीकल्चर वर्सेस फैक्ट्री कल्चर। और हम पिछले कुछ बुधवारों से इस मुद्दे पर थे, अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था। तो आज हम एक महत्वपूर्ण मुद्दा लेंगे, बहुत ही विशेष है ये हम सबको इस मुद्दे को समझना, गुरुकुल वर्सेस मॉडर्न एजुकेशन। अब हमने गुरुकुल के विषय में बहुत सुना और आजकल तो केवल सुनते हैं, क्योंकि गुरुकुल है नहीं, आजकल हम केवल सुन सकते हैं। परंतु जितना भी हमने अब तक गुरुकुल के विषय में सुना होगा, किससे सुना होगा, हो सकता है कि हमारे ही दादा परदादा या किसी किताब में, अमर चित्र कथा इस प्रकार के कुछ कॉमिक्स में, या यहां वहां थोड़ा बहुत कि हाँ भाई एक कहीं जंगलों में गुरु हुआ करते थे, शिष्य उनके अंडर गुरुकुल। तो आज हम इसे किसकी जुबानी सुनना चाहेंगे, ये हम आपको पहले प्रस्तुत करें, क्योंकि गुरुकुल हमारे भारत में अंग्रेज आए तब तक गुरुकुल थे, तब तक गुरुकुल ही थे, ये कहना ठीक रहेगा, तब तक गुरुकुल ही थे। और अंग्रेजों ने विशेष रूप से हम भारतीयों को गुलाम बनाने के लिए, हमारे ऊपर शोषण करने के लिए, उन्होंने जो सबसे अहम पैंतरा अपनाया वो था गुरुकुल सिस्टम बंद करना। हमारे देश का ये जो गुरुकुल सिस्टम है इसको बंद करो। तो काफी आज मैं बैठकर इसके ऊपर रिसर्च की मैंने, और रिसर्च में बहुत कुछ चौकन्ना करने वाली, मुझे आश्चर्यचकित करने वाली बातें मुझे समझ में आई। तो मैंने सोचा कि ये मुद्दा हम विस्तार से इसकी आज चर्चा करें। तो हम शुरुआत करेंगे 1931, गांधी जी जब गोलमेज सम्मेलन, इसे इंग्लिश में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, ये अटेंड करने के लिए कहां गए, लंदन गए। तो वहां पर इस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गांधी जी को हाउस ऑफ लॉर्ड्स और हाउस ऑफ कॉमन्स या ब्रिटिश पार्लियामेंट, उन्होंने वहां के जो लॉर्ड्स और वाइसरॉयज वगैरह, उन्होंने गांधी जी को इंडियन एजुकेशन सिस्टम के विषय में पूछा। और गांधी जी को कहा कि आपके भारतीय का जो हर प्रकार का ढांचा है या पॉलिसीज हैं या जो भी आपकी संस्कृति है, विशेष रूप से आपका ये जो एजुकेशन सिस्टम है ये सड़ा हुआ है। क्या कहा उन्होंने? सड़ा हुआ है। तो गांधी जी उस समय उनको कहे कि आप लोगों के आने से पहले हमारा सिस्टम बहुत ठीक से चल रहा था, आप लोगों की हुकूमत के पश्चात जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है वो सड़ गया। सबके सामने वहां पर कहा गांधी जी ने। और फिर उन्होंने गांधी जी को पूछा कि ठीक है आप अगर ये कह रहे हैं कि हमारे वजह से सब कुछ हुआ है तो आप बताइए कि आपके एजुकेशन सिस्टम के बारे में कुछ। तो उस समय गांधी जी के पास कोई डिटेल्स नहीं थे प्रेजेंट करने के, तो उन्होंने कहा नहीं मैं डिटेल्स खुद इकट्ठा पहले करूंगा, क्योंकि वो खुद गांधी जी एक आचार्य की भूमिका भी हर समय निभाते थे कि मैं पहले खुद सब दस्तावेज प्रमाण इकट्ठा करूंगा और उसके पश्चात फिर मैं इसे प्रस्तुत करूंगा। तो फिर गांधी जी आए और 1947 में जब हमें आजादी मिली उसके पश्चात ये शख्स धर्मपाल जी, जो कि गांधी जी के बहुत ही निकट के एसोसिएट रहे, तो इन्होंने गांधी जी से पूछा कि अब हमें आजादी मिल चुकी है, अब मेरे लिए क्या आदेश है आपका। तो तब गांधी जी ने धर्मपाल जी से कहा कि मैं चाहता हूं कि आप हमारा जो गुरुकुल सिस्टम है वो क्या था और वो गुरुकुल सिस्टम कैसे खत्म हुआ, ये पूरा इसकी तहकीकात कीजिए। तो धर्मपाल जी ने फिर अपने जिम्मे ये प्रोजेक्ट लिया और वो लंदन शिफ्ट हुए पता लगाने के लिए। वो लंदन शिफ्ट हुए और लंदन में वो बहुत साल रहे, कुछ डिकेड्स वहां पर वो रहे, केवल इसी उद्देश्य से पता लगाने के लिए कि हमारा जो ऐतिहासिक गुरुकुल सिस्टम था उस गुरुकुल सिस्टम को उसका क्या किया गया या उसके रिकॉर्ड्स वगैरह कहां। तो उनको आप विश्वास नहीं करेंगे कि हमारे गुरुकुल सिस्टम का डिटेल्ड रिकॉर्ड्स ब्रिटिश पार्लियामेंट में। तो मैं आज काफी, मेरे को कुछ 3-3.5 घंटे से ज्यादा लगा आज इसके ऊपर पूरा रिसर्च करने के लिए कि कहां पर ब्रिटिश जो हाउस ऑफ कॉमन्स है, हाउस ऑफ लॉर्ड्स है और उनका एक ब्रिटिश पार्लियामेंट का एक पर्सनल प्रेस है, हैंसार्ड जिसको कहते हैं, तो वहां पर ये सारे प्रमाण, ये सारे दस्तावेज मौजूद है। तो हम शुरुआत करेंगे कि ब्रिटिश पार्लियामेंट की जो प्रेस है, हाउस ऑफ लॉर्ड्स उसको कहते हैं, जैसे अपने यहां पर लोकसभा है, राज्यसभा है, वहां पर हाउस ऑफ कॉमन्स है, हाउस ऑफ लॉर्ड्स है। तो वहां के ऑफिशियल ये जो प्रिंटिंग प्रेस है कि जो भी कुछ वार्तालाप अब तक ब्रिटिश पार्लियामेंट में हुआ है, इतिहास से लेके जब से हाउस ऑफ कॉमन्स, हाउस ऑफ लॉर्ड्स का निर्माण हुआ है वहां से लेके अब तक जो भी कोई डिस्कशन ब्रिटिश पार्लियामेंट में होता है उसका रिकॉर्ड है इस प्रेस में, जिसका नाम है हैंसार्ड। तो यहां पर आप विश्वास नहीं करेंगे, हमारे गुरुकुल सिस्टम को लेकर कितने पन्ने होंगे, 1780 पन्ने हमारे गुरुकुल सिस्टम के विषय में जानकारी हाउस ऑफ कॉमन्स की प्रिंटिंग प्रेस के द्वारा प्रकाशित है। तो इसकी शुरुआत कहां से हुई, तो आज हम हमारे शास्त्रों से या कोई हमारे बड़े संत आचार्य गुरुवर्ग इनसे नहीं बल्कि इन्हीं अंग्रेजों की जुबानी सुनेंगे हमारे गुरुकुल का गुणगान। किसकी जुबानी? क्योंकि इन्होंने जो इतनी तहकीकात की, किस लिए तहकीकात की, हां वो भाव इनका पूरा प्रतिकूल था, कि सब खत्म नष्ट करने के लिए, परंतु जो स्टडी रिसर्च इन्होंने किया हमारे गुरुकुल सिस्टम के विषय में वो चौंकाने वाली बात है। तो विलियम, थोड़ा अगर आपको कुछ हिस्ट्री अगर पता है तो ये सब तो हमने भी पढ़ा था। विलियम एडम नाम का ये वायसरॉय 18वीं सदी में इसको भेजा गया इंडिया, इन द 18th सेंचुरी। और विलियम एडम, इसके असिस्टेंट ये लॉर्ड मैकॉले, लॉर्ड मैकॉले का नाम सुना होगा। तो इन दोनों को भेजा गया, तो ये असिस्टेंट लॉर्ड मैकॉले, तो लॉर्ड मैकॉले पूरा रिपोर्ट निकाले कि क्या भारतीय ये गुरुकुल सिस्टम क्या है या पूरी भारतीय संस्कृति क्या है। ये मैकॉले ने किसके बिहाफ पर, विलियम एडम के बिहाफ पर उन्होंने पूरी रिपोर्ट बनाई, और वो रिपोर्ट बनाकर फिर वो ब्रिटिश पार्लियामेंट के सामने। तो अब हम यहां पर डायलॉग आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं ब्रिटिश पार्लियामेंट और लॉर्ड मैकॉले के बीच। वहां पर कोई भारतीय नहीं है, वो लोग सारे अंग्रेज, और वो लोग खुल्लम खुल्ला हमारी भारतीय संस्कृति और हमारे भारतीय गुरुकुल सिस्टम के विषय में चर्चा कर रहे हैं। और उनके रूल के अनुसार हैंसार्ड प्रिंटिंग प्रेस में ये सब दस्तावेज मौजूद हैं, डॉक्यूमेंटेड हैं, एवरीथिंग इज डॉक्यूमेंटेड। तो मैकॉले, जब उनको पूछा गया तो डायरेक्ट अब कन्वर्सेशन चल रहा है हाउस ऑफ कॉमन्स का मैकॉले के साथ। तो सबसे पहले 1833 में जो मैकॉले का एड्रेस ब्रिटिश पार्लियामेंट के लिए, तो सबसे पहले मैकॉले कहता है, वी मस्ट एट प्रेजेंट डू आर बेस्ट टू फॉर्म अ क्लास हु मे बी इंटरप्रेटर्स बिटवीन अस एंड द मिलियंस ऑफ इंडियंस हुम वी गवर्न, अ क्लास ऑफ पर्सन्स इंडियन इन ब्लड एंड कलर बट इंग्लिश इन टेस्ट इन ओपिनियंस इन मॉरल्स एंड इन इंटेलेक्ट। तो सबसे पहले मैकॉले कह रहा है यहां पर, मैं सरल भाषा में इसको अनुवादित कर बताता हूं कि आप लोग अगर जाओगे, मतलब वो ब्रिटिश पार्लियामेंट को कह रहे हैं कि आप लोग अगर जाकर वहां पर हुकूमत करना चाहोगे तो नहीं कर पाओगे, क्योंकि उनकी संस्कृति बिल्कुल अलग है, उनकी भाषा बिल्कुल अलग है, एक नहीं कई भाषाएं हैं, सब कुछ उनका अलग है, इसलिए इंटरप्रेटर चाहिए। और हमें करना क्या है, संक्षिप्त रूप में इसने कह दिया, करना क्या है कि उन लोगों का कलर नहीं बदल सकते, उन लोगों का कलर नहीं बदल सकते, बदलना क्या है, उनके अंदर इंग्लिश टेस्ट डालना है, मत उनके मॉरल्स, उनकी नैतिकता और उनकी बुद्धि को फेरना है, मति उनकी मारनी है। यहां से उसने शुरुआत की। और ये जो फेमस आपने पढ़ा भी होगा मैकॉले का, जो वहां पर ये डॉक्यूमेंटेड है, या आप गूगल कर सकते हो इसके विषय में, रोल ऑफ एजुकेशन, लॉर्ड मैकॉले सेड द फॉलोइंग अबाउट इंडिया इन 1835 इन द ब्रिटिश पार्लियामेंट, I have travelled across the length and breadth of India and I have not seen one person who is a beggar, who is a thief. Such wealth I have seen in this country, such high moral values, people of such caliber that I do not think we would ever conquer this country unless we break the very backbone of this nation, which is her spiritual and cultural heritage. And therefore I propose that we replace her old and ancient education system, her culture, for if the Indians think that all that is foreign and English is good and greater than their own, they will lose their self-esteem, their native self-culture, and they will become what we want them, a truly dominated nation. Kiski zubani hai? Lord Macaulay. To inhone pucha ki, तुमने क्या ऐसा देखा कि तुम इतना पावरफुल स्टेटमेंट कह रहे हो, तुम उनके हो या हमारे हो? तो मैकॉले कहता है कि मैं लंदन, पेरिस, अमेरिका के कितने बड़े बड़े शहर न्यूयॉर्क, शिकागो, लॉस एंजलिस, वहां पर गया हूं मैं, अपना यूरोप के कितने बड़े बड़े शहरों में गया हूं। ये सारे शहर एक जगह पर आप रखो और ये सारे बड़े बड़े जो शहर उन्होंने लिस्ट दिए उसके, ये सारे बड़े बड़े शहरों की जो इकोनॉमी है, जो जो इनकी आर्थिक ताकत है, उसको एक जगह रखो और भारत का एक शहर एक तरफ रखो, उसका पलड़ा भारी होगा। और वो कौन सा शहर, उसने शहर का नाम भी बताया, सूरत। एक शहर सूरत, सूरत को एक तरफ रखो और ये सारे जो मैं जाकर आया हूं, आप लोग जाकर आए हो, बड़े बड़े जो यूरोप, अमेरिका, हमारा जो ये राजधानी है लंदन, ये सब को एक पलड़े पर रखो, सूरत अकेला भारी पड़ेगा। और वो कह रहा है तुम सोच रहे हो कि जाके इनके ऊपर तुम हुकूमत करोगे, भूल जाओ। तो यहां पर अब ये लोग सोचने लगे, क्या कहते हैं, सोने की चिड़िया। हम लोग कौन है, सोने की चिड़िया हमको कहा गया। तो अब ये सोचने लगे कि भाई यदि ये मैकॉले इतने कम समय में भारत के विषय में ये इतना कुछ जानकर, और क्योंकि वो कोई मूर्ख व्यक्ति नहीं भेजा गया था, ये मैकॉले बहुत बुद्धिमान था, ये बहुत प्रशिक्षित था इस काम में, ये और विलियम एडम दोनों। तब फिर अब ये आगे पूछने लगे कि भाई बताओ कि तुम क्या, और ये जो एजुकेशन सिस्टम है, तो उसने जोर दिया कि सबसे पहले वो पूछ रहे थे कि क्या करना है, किस प्रकार से हमें इनके ऊपर हुकूमत करने के लिए क्या क्या करना हो। तो सबसे पहले उसने कहा कि भाई इनका जो एजुकेशन सिस्टम है वो इतना पक्का है कि उसके वजह से सब कुछ इनके कंट्री में है, समृद्धि है, ऐश्वर्य है, इनके एजुकेशन सिस्टम के वजह से। तो यदि आपको शुरुआत करना है वो क्रैक लाने के लिए, तो इनके एजुकेशन सिस्टम के अंदर क्रैक लाना है। तो वो पूछते हैं कि बताओ, फिर कुछ बताओ उसके बारे में। तो फिर 1835 में हमारे भारत की साक्षरता, लिटरेसी जिसको बोलते हैं, साक्षरता उसका परसेंटेज आप जानना चाहेंगे, और ये किसने कहा है, मैकॉले कह रहा है। साउथ इंडिया 100%, 1835। वेस्टर्न इंडिया 98%, ईस्टर्न इंडिया 90%, नॉर्थ इंडिया 82%, सेंट्रल इंडिया 87%। तो उसने एवरेज निकाला कि ऑलमोस्ट 100% साक्षरता है इस भारत देश में 1835 में। तब फिर हाउस ऑफ कॉमन्स मैकॉले को पूछता है, तो भाई हमारा जो यूनाइटेड किंगडम है, हमारा जो यूनाइटेड किंगडम जिसको हम कहते हैं, तो ये यूनाइटेड किंगडम की साक्षरता क्या है, आप उसके हमारे बारे में बताओ, थोड़ा कंपैरिजन करो। तो मैकॉले कहता है कि हमारे एजुकेशन मिनिस्टर यहीं बैठे हैं, पार्लियामेंट में बैठे हैं, उनको बोलने दो। तो एजुकेशन मिनिस्टर को उठाया, तो एजुकेशन मिनिस्टर वो जानते थे ऊपरी ऊपरी तौर पर, तो उन्होंने कहा कि यूनाइटेड किंगडम है क्या, यूनाइटेड, उसको यूनाइटेड किंगडम इसलिए कहते हैं कि ये चार कंट्री उसके अंदर है, इंग्लैंड, वेल्स, नॉर्थ आयरलैंड और स्कॉटलैंड, ये चार कंट्रीज का जो समन्वय है वो है यूनाइटेड किंगडम। तो उन्होंने कहा कि ये चारों को मिला दो। किसने कहा, एजुकेशन मिनिस्टर ने कहा कि इन चारों को तुम मिला दो, और 1835 में उस दिन पूरे यूके की लिटरेसी 17% ओनली 17%, क्योंकि उस समय तक उनके पास एजुकेशन का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था। भारत को देखने के बाद उनका पहला स्कूल चर्च के पीछे एक गैराज में खुला, कहां पर? यूके में। और वहां पर क्या सिखाते थे? केवल बाइबल, क्योंकि उनको कोई जानकारी थी नहीं कि और क्या सिखाएं। तो केवल संडे के दिन, वो भी तो संडे के दिन चर्च के पीछे गैराज में उनका पहला स्कूल खोला। अब मैकॉले कहता है कि 1835 में 7,32,000 राजसु गांव, रेवेन्यू विलेजेस इंडिया के अंदर। उस समय रेवेन्यू विलेजेस का अर्थ क्या होता है कि वो गांव जहां पर उनकी साक्षरता तो है ही, परंतु वो साक्षरता प्रयोग में लाकर जो नॉलेज है, एजुकेशन है, एजुकेशन को वो गांव नॉलेज में लाकर जो रेवेन्यू दे रहे हैं पूरे इंडिया को, उसको कहते हैं रेवेन्यू विलेजेस। तो वैसे कितने रेवेन्यू विलेजेस, मैकॉले कह रहा है, पूरी स्टडी देखो, उसने आंकड़े दिए। उसने कहा 7,32,000 रेवेन्यू विलेजेस है इंडिया में, जहां पर क्या हो रहा है कि ये सारे 7,32,000 जो रेवेन्यू विलेजेस हैं, यहां पर इनका गुरुकुल सिस्टम, फिर उसने ये वर्ड यूज किया कि वो लोग इसको कहते हैं गुरुकुल। मैकॉले एज इट इज हाउस ऑफ कॉमन्स में कह रहा है कि उसको वो लोग कहते हैं गुरुकुल। तो विलियम एडम ने फिर उसको ट्रांसलेट किया, वो लोग उनको समझ में नहीं आया ये गुरुकुल क्या होता है, ये क्या है? कौन सी चिड़िया का नाम है गुरुकुल? तो फिर विलियम एडम उसको कहता है कि इंडिजिनियस एजुकेशन सिस्टम, उसको इंग्लिश में वो उनको समझने के लिए वो ट्रांसलेट करता है। तब फिर ये सारे जो रेवेन्यू विलेजेस जहां पर इतने सारे गुरुकुल हैं, तो फिर उन्होंने पूछा कि बताओ फिर ये गुरुकुल की स्ट्रेंथ कितनी होती। तो उन्होंने कहा कि सबसे जो छोटा गुरुकुल मैंने देखा पूरे भारत में, उसकी स्ट्रेंथ 200 विद्यार्थी, सबसे छोटा। और मैंने जो सबसे बड़ा गुरुकुल देखा भारत में, उसकी स्ट्रेंथ 20,000। एक गुरुकुल की स्ट्रेंथ 20,000। तब फिर इन्होंने मैकॉले से पूछा कि भाई 20,000 विद्यार्थियों को ये लोग संभालते कैसे? तब फिर मैकॉले कहता है कि वो करते क्या है, बहुत ही सुंदर उनका सिस्टम है, और उसने उसको नाम दिया मॉनिटोरियल सिस्टम। ये जो जो मॉनिटर होता है ना आजकल, अब स्कूलों में देखते हो, ये तब से चला रहा है। ये मैकॉले ने इंडिया से सीख कर उनको बताया कि हम लोग इंडिया जो पहले से पालन कर रहे थे। तो उन्होंने कहा कि करता क्या है, जो आचार्य होता है। अब देखिए, गुरु और आचार्य, इन दोनों में अंतर क्या है? उसने कहा कि गुरुकुल के सारे जो शिक्षक हैं वो गृहस्थ हैं, और उनको आचार्य कहा जाता है। आचार्य वो हैं जो अपने आचरण से सिखाए। तो वो, क्योंकि गृहस्थ तो अपने आचरण से सिखाते थे कि कैसे जीवन जीना है, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, पारिवारिक रूप से, अपने आचरण से सिखाते थे। इसलिए मैकॉले कहता है कि क्योंकि इनको आचार्य ये विद्यार्थी कहते थे, तो वो केवल जो क्लासरूम में जो सिखाया जाता है केवल उतना ही नहीं सीखते थे, उसके अलावा उसका पूरा आचरण देखते थे विद्यार्थी, किसका? शिक्षक का। इसलिए उसको आचार्य पुकारते थे। तो उसने कहा कि ये 20,000, मान लो उसने उनको जब पूछा गया, मैकॉले को पूछा गया कि ये 20,000 को संभालते कैसे, तो मैकॉले कहता है कि 50 का एक ग्रुप लेता है आचार्य, फिर उनको वो प्रशिक्षित करता है, और उनको प्रशिक्षित करने के बाद उसमें से एक कुलपति बनाता है, उसका नाम होता है कुलपति। तो वो कुलपति उन 50 को संभालता है, और ये 50 फिर और 50 के ग्रुप को खड़ा करते, उनको संभालते। ऐसे ये लोग, इसको कहते हैं मॉनिटोरियल सिस्टम, जिससे ये स्प्रेड होते हैं। और वैसे पूरा उसने चार्ट बनाया कि कैसे एक गुरु होता है उसके अंडर, फिर एक कुलपति होता है उसके अंडर 50 कुलपति, फिर वो 50 कुलपति और 50 डिवाइड होते हैं, फिर और 50 डिवाइड होते हैं। ऐसे करके बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से 20,000 स्टूडेंट्स का वो गुरुकुल पीसफुली संभाल रहे हैं। और मैकॉले कहता है कि उनका मैनेजमेंट ऐसा मैनेजमेंट है कि मैंने वहां पर गुरुकुल में कोई किसी की बदतमीजी देखी नहीं, सबका गुरु के प्रति आदर, और गुरु जो उत्साह से विद्यार्थियों को सिखा रहे हैं, उन दोनों का जो रिश्ता है, वो रिश्ता मैं अंग्रेजी भाषा में, मैकॉले कहता है कि मैं बता ही नहीं सकता, क्योंकि वो जो रिश्ता है वो हमारे अंग्रेजी भाषा में उसके लिए कोई शब्द ही नहीं है। उस रिश्ते को बयान करने के लिए कोई शब्द ही नहीं। मैं कॉल लेके तब फिर पूछा गया कि भाई क्या सिखाते हैं, बताओ ये गुरुकुल में सिखाते क्या है। तो उसने कुछ सब्जेक्ट्स, इतने ऐसे सारे सब्जेक्ट्स थे कि उसे भी पता नहीं था कि ये क्या सब्जेक्ट्स हैं, कि इनका मतलब क्या है, इनको कैसे ट्रांसलेट किया जाए। तो उसको जो ध्यान में आया उस समय, जो उसने लिख रखा था, उसके जो प्रमाण दस्तावेज, उसके अनुसार ये सारे सब्जेक्ट्स केवल जो उसे याद आए थे, वैदिक मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी, मेटलर्जी, एस्ट्रोफिजिक्स, केमिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, मेडिकल साइंस, सर्जरी। ये कब की बात कर रहे हैं हम? 1835 की बात कर रहे हैं। रसायन शास्त्र, धातु विज्ञान, चिकित्सा, सर्जरी, ये सब कुछ, एस्ट्रोनॉमी, खगोल शास्त्र। अब ये नाम भी पहली बार आपने सुना, खगोल शास्त्र। एस्ट्रोनॉमी को खगोल शास्त्र कहते हैं, खगोल शास्त्र, भूगोल शास्त्र, शास्त्र उनके आगे शास्त्र लगाते थे। तो आप सोच रहे होंगे कि भाई ये तो अभी भी है, ये तो अभी भी है, लेकिन अभी जो है ये सब कुछ किसने दिया हुआ है? ये जो वहां का एजुकेशन उन्होंने सब तोड़ मरोड़ के यहां से पहले सीख कर फिर उसको तोड़ मरोड़ कर जो हमको दिया। तो आपको मैं कुछ अभी के हमारे मॉडर्न किड्स जिन्होंने वैदिक मैथमेटिक्स सीखा, एक नमूना पेश करना चाहूंगा कि वैदिक मैथमेटिक्स सीखकर कोई विद्यार्थी कितना उसका जो ये कहते हैं स्विफ्टनेस, जिसके अंदर कितनी फुर्ती उसके अंदर आती है कैलकुलेशन की। जैसे कोई ये कहेंगे वैदिक कैलकुलेटर है, लाइव ह्यूमन वैदिक कैलकुलेटर। तो ये जो बंदा है इसके हाथ में अपना मॉडर्न कैलकुलेटर, और आप देखना कि ये जो बच्चे हैं जिन्होंने वैदिक मैथमेटिक्स सीखा है, ये सीखे हुए क्या है? वैदिक मैथमेटिक्स। तो ये किसको टक्कर दे रहे हैं? कैलसी कैलकुलेटर को टक्कर दे रहे हैं।
4785589658745827425896 3 ready?
6
into 4
2 6
minus 1478 1138 minus 547 591 minus 358
4086 माइनस। तो सोचो ये अभी के छात्र हैं, अभी के विद्यार्थी जिन्होंने केवल एक सब्जेक्ट वैदिक मैथमेटिक्स सीखा। तो ऐसे कितने अनगिनत जो विषय मैं कॉले बता रहा है हाउस ऑफ कॉमन्स को कि क्या क्या उनके गुरुकुल के विषय। फिर बहुत ही इंटरेस्टिंग बात उसने कहा कि दो चीजें मुख्य रूप से ये गुरुकुल में ये लोग देते हैं, एक है शिक्षा और एक है विद्या। दोनों में अंतर क्या है? अब देखिए, आपने कहीं पर भी अभी भी भारत में जो स्कूल्स हैं, हाँ, जो हमारे ट्रेडिशनल नाम स्कूल्स के, तो क्या लिखते हैं वो ट्रेडिशनल नाम स्कूल्स के वो लोग? विद्यालय। हर समय विद्यालय लिखा जाता है और उसको विद्यार्थी कहते हैं। कभी भी शिक्षालय कहीं पे नहीं लिखा हुआ है और शिक्षार्थी नहीं उसको कहते हैं। तो ये मैकॉले रिपोर्ट कर रहा है कि दोनों में डिफरेंस क्या है, और गुरुकुल में ये दोनों सिखाए जा रहे हैं। वो कह रहा है कि जो शिक्षा है वो क्या है, भौतिक ज्ञान, और विद्या क्या है, आध्यात्मिक ज्ञान। वो उनको ये सब ज्ञान दे रहे हैं कि भाई तुम आत्मा हो, परमात्मा है, पुनर्जन्म, ये सब विद्या। और पहले जो हमने लिस्ट देखी वो सब शिक्षा। तो शिक्षा और विद्या परंतु महत्व, मैकॉले कहता है कि वो महत्व जोर किसको देते हैं, बस बेसिक नॉलेज शिक्षा की मिलती है उनको, परंतु जोर उनका हर समय विद्या पे रहता है। इसलिए उनके जो गुरुकुल हैं उनको वो विद्यालय बोलते हैं, और उन विद्यालयों में जो उनके शिष्य हैं या स्टूडेंट्स हैं उन स्टूडेंट्स को क्या कहा जाता है, विद्यार्थी। तो यदि हम किसी को विद्यार्थी कहें, यदि कोई कहे कि मैं विद्यार्थी हूं, तो समझ में आना चाहिए या पूछना चाहिए कि भैया आध्यात्मिक ज्ञान मिल रहा है कि नहीं। क्योंकि यदि कोई केवल भौतिक ज्ञान ले रहा है तो वो केवल शिक्षार्थी हुआ है, वो विद्यार्थी नहीं हुआ है, या वो केवल शिक्षालय में जा रहा है, वो विद्यालय में नहीं जा रहा है। और यदि कोई स्कूल अपना नाम विद्यालय रख रहा है तो स्कूल में जाकर हम पूछ सकते हैं कि भाई तुम विद्या दे रहे हो या शिक्षा दे रहे हो, और यदि विद्या नहीं दे रहे तो फिर नाम बदलो कम से कम, इसको विद्यालय मत बोलो। अब एक और महत्वपूर्ण डिफरेंस स्कूल और गुरुकुल में, तो मैकॉले कहता है कि जो एकांगी का अर्थ है वन साइडेड, और सर्वांगी का अर्थ है मल्टी साइडेड। तो जब मैकॉले को पूछा गया कि भाई इतने सारे सब्जेक्ट वो एक विद्यार्थी को सिखाते कैसे, तो मैकॉले ने कहा कि वो एक सब्जेक्ट दे सिखाते हैं, सबसे पहले सारे सब्जेक्ट एक साथ नहीं सिखाते। बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, वो पहले एक सब्जेक्ट सिखाएंगे, और वो एक सब्जेक्ट जब तक वो उसका पक्का होता है, पूरा पक्का होने के बाद फिर उसको दूसरा सब्जेक्ट सिखाया जाता है, और फिर तीसरा सब्जेक्ट। और इतना ही नहीं, उसको वहां पर रहना पड़ता है उस गुरुकुल में, और वहां पर मल्टी साइडेड उसको उसका होलिस्टिक ग्रोथ होता है। द स्टूडेंट ग्रोज लाइक अ मल्टी फेसेटेड डायमंड, मैकॉले बोलता है। इस प्रकार से मैकॉले गुणगान कर रहा था। तो अभी का जो मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम है, एक इंटरेस्टिंग कार्टून है उसके विषय में, कि यहां पर जैसे इसने कह दिया, फॉर अ फेयर सिलेक्शन एवरीबडी हैज टू टेक द सेम एग्जाम, प्लीज क्लाइम दैट ट्री। सारे जानवरों को बोल दिया है कि सबके लिए एक एग्जाम। तो आजकल सिस्टम क्या है कि किसी को अगर इंटरेस्ट नहीं है, विज्ञान में इंटरेस्ट नहीं है, मैथ्स में इंटरेस्ट नहीं, जो भी आपको उसको पास करना ही है, अगर उसको आप पास नहीं करेंगे उसमें तो फेल। अभी कितनी बार हम देखते हैं कि स्टूडेंट्स को एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में ज्यादा इंटरेस्ट होता है, कईयों को मैथ्स में बहुत इंटरेस्ट होता है, कईयों को साइंस में बहुत इंटरेस्ट होता है, कईयों को हिस्ट्री में इंटरेस्ट होता है, लेकिन वहां पर आजकल के सिस्टम में नहीं, आपका इंटरेस्ट बाद में वो आप देखते रहना करते रहना। यहां पर जो हमारे स्कूल की पॉलिसीज हैं उसके अनुसार आपको हर एक सब्जेक्ट में इतना इतना लाना है, और रूल बना दिया। तो फिर हम देखते हैं कि आजकल के बच्चों को लेकर जो थोड़ा लाइट्स ऑफ कर, व्हाट इज द प्लाइट ऑफ द मॉडर्न स्कूल किड्स, व्हाट डू दे हैव टू से अबाउट education which is forced upon them.
उठो बेटा, 3 बजने वाले हैं। हिंदी ट्यूशन के लिए सर आते ही होंगे, फिर 4:30 से 6:30 क्लासेस भी तो है ना, और हाँ 7 बजे भरतनाट्यम क्लासेस है, उनकी फीस लेते जाना। सवा 8 को स्विमिंग पूल पे आ जाना, मैं तुम्हें वही मिलूंगी। अभी उठो,
मम्मी 5 मिनट्स।
ट्यूशन, क्लासेस, डांसिंग, स्विमिंग, इन सब के बिना जिंदगी अधूरी है। क्या बच्चों को सब आना इतना जरूरी है? माँ का कंपटीशन सहेलियों के साथ रहकर, बेटा होना चाहिए तू दूसरों से बेहतर। जिंदगी एक रेस, बनना है तुझे एस। अगर हम सब अलग है तो एक जैसा सोचने का क्यों ये कायदा? दूसरे से बेहतर होने में खुद को मिटाने का क्या है फायदा? बच्चों की हर फरमाइश पूरी करने से आप अच्छे पिता नहीं बनते। ब्रांडेड कपड़े और लेटेस्ट गैजेट देने से आपके बच्चे मॉडर्न नहीं बनते। क्या फायदा अगर आपके बच्चे के हाथ में लेटेस्ट गैजेट हो और सोच में हवस हो? इंसान मॉडर्न अपनी सोच से बनता है, उस सोच से उनकी पहचान कराओ, पहले उन्हें एक अच्छा इंसान बनाओ। सरकार बताए भारत साक्षरिय का सपना आंखों में, पता नहीं फिर क्यों है फीस लाखों में। SSC, ICSE, CBSE कौन से बोर्ड में पढ़ा है ये एक बाधा। स्कूल बैग का वजन बच्चों से ज्यादा, पढ़ाई के बोझ से सारे बच्चे त्रस्त है। आज के तारीख में औलाद बाप से ज्यादा व्यस्त है। एग्जाम के रिजल्ट से बच्चों का मोल तय नहीं होता। मार्क्स कम आने से इंसान जिंदगी में फेल नहीं होता।
देश, प्रदेश की राजधानी दिल्ली।
प्रदेश की दिल्ली और देश की एक की स्पेलिंग बताओ। उधर उधर देख के मत बताओ, उधर देख के बताओ, बताओ बताओ एक की स्पेलिंग बताओ।
नहीं मालूम।
सीएम कौन है आपका?
सर नया है या नाम याद नहीं आ रहा मुझे।
नया है
नहीं है तो पुराना।
सीएम कौन होता
है? डीएम से छोटे होते
हैं। उत्तर प्रदेश का
मुख्यमंत्री राज्यपाल। राज्यपाल कौन है?
राज्यपाल।
उपराष्ट्रपति कौन है अपने यहाँ का? भारत का उपराष्ट्रपति कौन है?
अपने भारत के प्रधानमंत्री कौन है?
वहां जाए
बताइए नाम। नहीं मालूम।
मालूम तो है।
इधर देखिए साहब
ये बताइए आप यहाँ इस विद्यालय में कौन सी पोस्ट में है?
प्रधानाध्यापक।
आपको ये नहीं मालूम अपने देश का प्रधानमंत्री कौन है?
मालूम तो है।
भूल गए?
हाँ भूल गए।
चलिए ये बताइए आज कौन सा दिन है?
आज बृहस्पतिवार है।
इंग्लिश में क्या कहते हैं इसे?
इंग्लिश में
फ्राइडे। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल का नाम क्या? मैंने एक चीज बताइए कि उत्तराखंड को बने में कितना समय हो गया होगा?
उत्तराखंड को बने में
जी। अच्छा चलिए कोई बात नहीं। हमारे देश के जो है रक्षा मंत्री कौन है? अच्छा चलिए इसे भी छोड़िए। हमारे जो प्रदेश के हैं एजुकेशन मिनिस्टर कौन है? शिक्षा मंत्री कौन है?
शिक्षा मंत्री
ये भी ध्यान नहीं है आपके?
ध्यान।
अच्छा अच्छा तो हमारे देश के जो है प्रेसिडेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कौन है? ये भी नहीं है याद है। हमारे देश के प्रधानमंत्री कौन है?
प्रधानमंत्री।
हमारे देश के प्रधानमंत्री कौन है?
प्रधानमंत्री।
बिल्कुल बंद। 30% टीचर ऐसे हैं कि बिल्कुल एजुकेशन के बारे में उन्होंने कुछ नहीं मालूम उनको। मैं उर्दू वाले भी टीचर देखे हूँ, ये वाले भी देखे हूँ, पहाड़े नहीं आते हैं, जनरल नॉलेज नहीं आता है, अंग्रेजी भी नहीं आती है, अंग्रेजी ककारे नहीं आते हैं, तमाम सारी ऐसी चीजें हैं। अब लेकिन उनपे कार्रवाई क्या की जा सकती है ये मुझे।
खैर ये सारी चीजें जानना फिर से उसे विद्या नहीं कहेंगे। कोई ठीक है सब कुछ जान लिया कि कौन क्या है, कौन रक्षा मंत्री है, कौन राष्ट्रपति है, कौन उपराष्ट्रपति, कौन प्रधानमंत्री है, ये सारी चीजें जानना फिर भी उसको आप विद्यार्थी नहीं करोगे या फिर विद्यालय नहीं कहोगे। तो फिर मैकॉले को हाउस ऑफ कॉमन्स पूछता है कि ठीक है अब बताओ कि इनके गुरुकुल में आप जो बोल रहे हो कि इतने सारे सब्जेक्ट होते हैं और सबसे बड़ा गुरुकुल जो आपने देखा 20,000 विद्यार्थियों का है, तो बताओ फिर वहां पर ये इनके जो एग्जाम जो लेते हैं तो वो किस प्रकार के एग्जाम होते हैं? तो फिर मैकॉले कहता है कि वहां पर एग्जाम होते ही नहीं है। 18 सेंचुरी की बात है, वो कह रहा है कि वहां पे एग्जाम होते ही नहीं है। तो क्या होता है वहां पर? उनको सब्जेक्ट सिखाया जाता है और फिर उनको प्रोजेक्ट दिया जाता है और उनको संकल्प लेना पड़ता है। क्या संकल्प? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इस ये जो डिस्कशन चल रहा था जब मैकॉले कह रहा था तो बीच में अब विलियम एडम आता है। विलियम एडम कहता है कि मैं बताता हूं आपको कि वहां के जो विद्यार्थी हैं गुरुकुल के पूरी विद्या प्राप्त करने के पश्चात अब उनको समाज में उस विद्या का योगदान देना है। तो जो समाज की समृद्धि की जो चीजें हैं उनके लिए उनको योगदान। फिर बाद में विलियम एडम कहता है हाउस ऑफ कॉमन्स में, वो कहता है कि मैंने खुद देखा कि आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम के पास एक गुरुकुल और वहां के विद्यार्थियों ने शिक्षकों के साथ मिलकर उन्होंने बारहवीं सदी में, 12th century में उन्होंने एक बांध बांधा, डैम, जो कि इतिहास में पूरे विश्व का सबसे पहला डैम, कहां पर, किसने, आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम के पास का एक गांव के एक गुरुकुल ने वर्ल्ड का सबसे पहला डैम बांधा 12th century में, और वो अब तक है, वो अब तक है, कितना, 800 से भी ज्यादा साल हो गए हैं, वो अब तक है। तो फिर उसको पूछा गया, किसको पूछा गया, विलियम एडम को पूछा गया कि भाई इसमें क्या ऐसी विशेषता है, तो विलियम एडम कहता है कि मैं देख कर आया उस डैम को, मैं देख कर आया जिस प्रकार की इंजीनियरिंग वहां पर इस्तेमाल की गई है, हम तो कल्पना भी नहीं कर सकते। कावेरी के तट पर, और कावेरी नदी के विषय में विलियम एडम कहता है कि वो नदी, इतना बहाव उस नदी के अंदर है कि वो डैम को कितने बुद्धिमत्ता से बनाया गया है कि यदि वो डायरेक्ट अगर वॉल बनाता कोई तो वो टूट जाता, अब तक तो कुछ नहीं रहता उसका। परंतु उन्होंने सिविल इंजीनियरिंग का ऐसा दिमाग लगाकर वो गुरुकुल ने वो जो डैम बनाया है वो जेड शेप में बनाया है, तो जो पानी है वो डिस्पर्स होकर जाता है, इसलिए अब तक 800 से भी ज्यादा साल हो गए हैं आंध्र प्रदेश में वो डैम अब तक टिका हुआ है जो 12th century में बनाया था। तो विलियम एडम कहता है कि ये जो संकल्प का जो कॉन्सेप्ट है गुरुकुल के अंदर उनका, ये संकल्प का कॉन्सेप्ट क्या है कि भैया कोई डिग्री नहीं, कोई ऐसे डिग्री नहीं जो फ्रेम कर तुम रख लो कहीं पर। उनको संकल्प लेना पड़ता था कि जो मुझे मेरे आचार्य ने सिखाया मैं उसे समाज उपयोगी कामों में लगाऊंगा, गौशालाएं, धर्मशालाएं, ये बांध इत्यादि, इसमें मैं इस विद्या को, इस शिक्षा को लगाऊंगा। यह संकल्प उसको लेना पड़ता है और फिर उसको योगदान देना पड़ता है, इसलिए कोई एग्जाम नहीं होता, वो डायरेक्टली वो लोग फील्ड पर जाकर, जैसे लाला लाजपत राय, उनके पास एक व्यक्ति आए थे और नौकरी के लिए आए, तो उन्होंने उससे पूछा कि तुम क्या कर सकते हो, तो उसने कहा मैंने बीकॉम किया, नहीं बीए किया है मैंने। तो लाला लाजपत राय उनसे पूछते हैं, मैंने ये नहीं पूछा कि तुमने क्या पढ़ा है, मैंने पूछा तुम क्या कर सकते हो, दोनों में बहुत अंतर है, तुमने क्या पढ़ा है और तुम क्या कर सकते हो, दोनों में बहुत अंतर है। तो उन्होंने कहा मुझे बताओ तुम कर क्या सकते हो, ये मत बताओ कि तुमने पढ़ा क्या है, मुझे खाली तुम्हारी डिग्री मत दिखाओ। एमबीए का आजकल का डेफिनेशन क्या है, आजकल एमबीए बोलते हैं, मॉडर्न बीए, बतेरे घूम रहे हैं ले लेकर, हम भी एमबीए, हम भी एमबीए। तो देखो विलियम एडम और मैकॉले 1835 में कह रहे हैं कि वहां पर कोई एग्जाम नहीं होता है, वहां पर वो लोग एक एक सब्जेक्ट सिखाया जाता है और उनको ओथ लेना पड़ता है, संकल्प लेना पड़ता है, किस चीज का, कि ये जो विद्या है उसको समाज उपयोगी कार्यों में वो लगाएंगे। तो अब ये प्रश्न पूछा गया मैकॉले से कि क्या उनके पास कोई हायर एजुकेशन है, तो मैकॉले ने कहा हायर एजुकेशन मैं बताता हूं आपको। तो सबसे पहले उसने बताया कि ये श्लोक, इसका ट्रांसलेशन बताया, असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर मा अमृतम गमय, फ्रॉम इग्नोरेंस लीड मी टू ट्रुथ, फ्रॉम डार्कनेस लीड मी टू लाइट, फ्रॉम डेथ लीड मी टू इमोर्टैलिटी। ये मैकॉले कह रहा है कि ये इनके हायर एजुकेशन की शुरुआत है। एजुकेशन इज द मूवमेंट इन इंडिया फ्रॉम डार्कनेस टू लाइट, और हायर एजुकेशन के विषय में फिर वो कहता है 1835 में इंडिया में 15,800 विश्वविद्यालय थे, जैसे कि अमरावती विश्वविद्यालय, कांगड़ा विश्वविद्यालय। तो जैसे अमरावती विश्वविद्यालय के विषय में मैकॉले कहता है कि वहां पर धातु विज्ञान, मेटलर्जी सिखाया जा रहा है, और फिर उसने ये जो कांगड़ा विश्वविद्यालय, इसके विषय में कहा कि यहां पर मैंने जाकर देखा कि सबसे आधुनिक टेक्नोलॉजी की सर्जरी हो रही है 18th सेंचुरी में। उस सर्जरी का नाम बताया राइनोप्लास्टी, इसको आजकल की भाषा में कहते हैं स्किन ग्राफ्टिंग, प्लास्टिक सर्जरी जिसमें होता है ना स्किन ग्राफ्टिंग, तो राइनोप्लास्टी। तो उसने कहा कि भाई जैसे एक शरीर के एक भाग का अगर कोई स्किन खराब हो गया तो दूसरे भाग से स्किन निकालकर, ये कहां पर, कांगड़ा विश्वविद्यालय में 18th सेंचुरी में उसने देखा। और वो कहता है हाउस ऑफ कॉमन्स में कि मैंने देखा वहां पर 500 से ज्यादा उनके उपकरण हैं वो राइनोप्लास्टी करने के लिए, और हर एक उपकरण जो वो यूज कर रहे हैं वो रस्ट फ्री है, उसके ऊपर जंग नहीं लग सकता, क्योंकि उनका जो मेटलर्जी का ज्ञान है वो इतना पक्का है कि वो ऐसे ऐसे मेटल्स निकाले हैं कि जिसके ऊपर जंग नहीं चढ़ सकता। आप अगर दिल्ली में मेहरौली में जाओ तो वहां पर जो खंभा है आज दिन तक उसके ऊपर जंग का एक दाग नहीं है, वो आयन पिलर इतना बड़ा मेहरौली का, एक जंग नहीं है उसके अंदर, दाग नहीं है। और उस जमाने का है, वो कह मैंने बीसियों क्लिप्स देखे, उनके सर्जिकल क्लिप्स देखे, मैंने उनके उपकरण देखे, ये सारे क्लिप्स उपकरण सब रस्ट फ्री। और क्या कर रहे हैं वो लोग, उनको ये सब ज्ञान है स्किन ग्राफ्टिंग। तो जब मैकॉले ये कह रहा था हाउस ऑफ कॉमन्स में तो एक कर्नल कूट उठा वहां पर, और उसने कहा कि मैं रहा हूं इंडिया में और मैं कहता हूं कि मैंने वहां पर ये करवाया है। उसने कहा कि मेरा एक बार युद्ध हुआ हैदर अली नाम के एक शख्स से, तो हैदर अली ने मेरे नाक काट दी। तो ये जो मेरी नाक आप लोग देख रहे हो, वो हाउस ऑफ कॉमन्स को कह रहा है, जो मेरी नाक आप लोग देख रहे हो कौन है, कर्नल कूट, मेरी नाक जो आप देख रहे हो ये मैंने बेलगाम में जाकर ये राइनोप्लास्टिक कराया। तो फिर उसको पूछा कि भाई तेरी खाली नाक क्यों काटी, तेरा सर क्यों नहीं काटा उन्होंने। बहुत सुंदर जवाब देता वो कर्नल कूट, बहुत सुंदर जवाब देता, वो कहता है कि वो जो भारतीय हैं वो बहुत बुद्धिमान है, उनके संस्कृति के अनुसार यदि नाक कट जाए तो सर काटने से भी बदतर है, इसलिए उनको अगर आप चॉइस दो तो वो सर नहीं काटेंगे, नाक काट के छोड़ देंगे। तो उन्होंने उस हैदर अली ने मेरी नाक काट दी, उसके पश्चात फिर मैं सोचा कि क्या अभी 18th सेंचुरी में सोचो उसकी नाक कटी हुई तो क्या करेगा, कहां जाएगा। तो फिर उसको पता लगा कि भाई इंडिया के अंदर वो टेक्नोलॉजी है, कौन सी, ये राइनोप्लास्टी वाली टेक्नोलॉजी, वो बेलगाम में जाके उसने अपना नाक रिपेयर करवाया। तो ये विश्वविद्यालय के विषय में जब पूछा गया हायर एजुकेशन क्या है भारत के अंदर, तो 18th सेंचुरी में मैकॉले कहता है कि 15,800 से ज्यादा हायर एजुकेशन वाले विश्वविद्यालय हैं। अच्छा, उस समय यूरोप ग्रीक का ये फादर ऑफ मेडिसिन जिसको कहा जाता था, इसका नाम हिप्पोक्रेटस। नहीं, आज भी डॉक्टर जो हैं उनको ये ओथ लेना पड़ता है, हिप्पोक्रेटिक ओथ। कोई डॉक्टर है यहां पर तो ये ओथ लेना पड़ता है। तो ये जो हिप्पोक्रेटस, तो ये था फादर ऑफ द मेडिसिन, ये ग्रीस से था, ग्रीक फादर ऑफ द मेडिसिन। तो उस समय यही बस इसी को जानते थे कि भाई चिकित्सा मतलब हिप्पोक्रेटस, और इसकी चिकित्सा क्या थी। हां, कुछ चीजें इसने दी, परंतु इसकी चिकित्सा क्या थी कि जब भी कोई बीमार हो तो ये कहता था कि खून अशुद्ध होने के वजह से बीमार होता है, तो वो नब्ज काट देता था, तो खून बहाते रहो बहाते रहो बहाते रहो, ठीक हो जाएगा, ये उसका इलाज था। तो मैकॉले ने कहा कि हम कौन सा इलाज जानते हैं, ये हिप्पोक्रेटिस का इलाज जानते हैं कि भाई कोई बीमार हो जाए तो उसकी नब्ज काटते रहो, खून निकालते रहो। आपको पता है अमेरिका का जो फर्स्ट प्रेसिडेंट, क्या नाम था उसका, जॉर्ज वॉशिंगटन कैसे मरा। जॉर्ज वॉशिंगटन तीन बार बीमार पड़ा और उसके डॉक्टर ने यही किया, तीन बार उसके नब्ज काटकर खून निकाल दिया, एक लीटर खून निकाल दिया, फिर बाद में सुबह देखा तो मरा पड़ा था। और ये कहां से उसने इलाज सीखा या उसके डॉक्टरों ने, ये हिप्पोक्रेटिस से सीखा। तो फिर मैकॉले कहता है कि हम तो केवल उतना ही इलाज जानते हैं, परंतु मैंने भारत में देखा कि वहां की चिकित्सा, वहां पर इतनी जड़ी बूटियां हैं, इतने चूर्ण हैं, इतने काढ़े हैं, अलग अलग प्रकार के उसके कॉम्बिनेशंस हैं, और आप कोई बीमारी ले लो सारी बीमारी का इलाज, और वो भी फ्री फ्री है। मैकॉले कहता है कि वहां पर विद्या, वहां पर चिकित्सा, वहां पर भोजन सब फ्री मिलता है। अगर वहां पर किसी ने ये सारी चीजें को चार्ज किया तो वो गैर कानूनी है। अब ये जो इसके विषय में उसने, तो फिर उसको पूछा गया कि भाई तुमने वहां पर कोई जड़ी बूटी, तुमने कितनी जड़ी बूटी वहां पर देखी? तो मैकॉले कहता है कि मैं जितने दिन वहां पर रहा तब तक मैंने 16,000 जड़ी बूटियां मैंने देखी, अलग अलग प्रकार की चिकित्सा के लिए वो लोग इस्तेमाल करते हैं, और वो तो लिस्ट मेरी पूरी नहीं हुई थी। मैं आ गया यहां पे 16,000 जड़ी बूटी, उनका सबका कॉम्बिनेशन इत्यादि। तो अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि उस समय वो जो दौर था 18वीं सदी का दौर, जहां पर ये सारी चीजें चल रही है, एक हमारा भारत और दूसरी ओर ये पूरा पाश्चात्य देश, तो ये जो प्लेटो जिसको लोग भगवान मानते थे वहां पर यूरोप में, मतलब ये कहा गया था कि द एंटायर यूरोपियन कल्चर इज जस्ट द फुटनोट फॉर प्लेटो, ऐसे ऐसे प्लेटो को ऐसे ग्लोरीफाई किया गया था। अब ये प्लेटो माना कि हाँ एक बहुत बड़ा फिलोसोफर ये था यूरोप का, परंतु आप जानने जान के चौकन्ना हैरान हो जाएंगे कि इसने क्या कहा। ये कहता है कि जो एजुकेशन है वो केवल प्रभु वर्ग के लिए, मतलब जो ऊंचे क्लास के हैं केवल उनके लिए, बाकी किसी के लिए नहीं है। तो जब इसको पूछा गया कि भाई हमको स्कूल खोलना चाहिए, स्कूल खोलने क्या जरूरत है, क्योंकि सबके लिए एजुकेशन थोड़ी होना चाहिए। इसके अनुसार ये कहता है कि एजुकेशन केवल, इसने वो नाम दिया प्रभु वर्ग के लिए, उनको एजुकेशन मिलना चाहिए, और वो उनका एजुकेशन किंगली क्लास के लिए होना चाहिए, और उनका एजुकेशन उनके घर पर उनके महल में होम स्कूलिंग टाइप उनको दिया जाएगा, स्कूल खोलने की क्या जरूरत है। तो इसने वो एबॉलिश कर दिया। इतना ही नहीं, इसने कहा एक तो एजुकेशन खाली उनको मिलना चाहिए, और दूसरा ये कहता है, अब कई बार लोग ये प्रश्न पूछते हैं ना कि क्या ये हमारी भारतीय वैदिक संस्कृति जिसमें स्त्रियों को नीचा देखा जाता है, आप सुनना चाहेंगे प्लेटो ने स्त्रियों के विषय में क्या कहा। प्लेटो कहता है कि स्त्रियों के अंदर आत्मा ही नहीं होता है। स्त्रियों के अंदर आत्मा ही नहीं होता है, और 1950 तक यूरोप में स्त्रियों को अदालत में गवाही देना मना था। वो गवाही नहीं दे सकते थे अदालत में आकर, क्योंकि उनको आत्मा ही नहीं है, तो उनको दिमाग नहीं है, तो कुछ भी नहीं है। ये 1950 तक, कोई बैंक अकाउंट उनका वो खोल नहीं सकते, वो वोट नहीं कर सकते, वो विटनेस गवाही नहीं दे सकते किसी अदालत में, क्योंकि उनकी आत्मा नहीं, अकेले वो बाहर घूम नहीं सकते क्योंकि भटक जाएंगे। ये प्लेटो, और इसके पीछे रूसो, इसके पीछे डेकार्ते, ये सारे इसके पीछे, ये सब इसकी परंपरा में आए फिर बाद में, और इनको ये लोग कहते थे कि ये हमारे यूरोपियन संस्कृति के ये भगवान है। अच्छा हुआ क्या कि उस दौरान फिर बगावत हुई, तो बगावत इस महिला ने की, ये एक फ्रेंच ऑथर थी सिमोन दे बोवर, तो इसने बगावत की, क्योंकि ये जो प्लेटो सब कुछ कहता था इसके अगेंस्ट इसने बगावत की, और इसने बगावत में कहा कि कैसे आप कह सकते हो कि जब एक शिशु एक स्त्री पैदा कर दे रही है और एक पुरुष को पैदा कर दे रही है, और तुम कह रहे हो उसके अंदर आत्मा नहीं है। तो इसने बगावत की, तो इसके बगावत के पश्चात ज्यादा से ज्यादा वो लोग क्या कर सके कि 3 स्त्रियां जो गवाही देगी अदालत में एक पुरुष के समान होगी। आप किसको पिछड़ावा कहोगे? और मैकॉले कहता है कि भारत में मैंने देखा कि वो लोग स्त्रियों को पूजते हैं, उनकी तो एक माता नहीं सात सात माताएं होती हैं, एक पुरुष की सात सात माताएं होती हैं और वो उन माताओं को पूजते हैं, वो धरती को माता कहते हैं, वो गाय को माता कहते हैं, वो गुरु पत्नी को माता कहते हैं, राजा की पत्नी को माता कहते हैं, स्वयं की जो माता होती है वो एक होती है, ऐसे सात माताएं उनकी होती हैं। अच्छा एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज मुझे पता लगी, ये जो सिमोन दे बोर इसने जो लिखी, इसने कहा कि जो ये बड़े बड़े राजा यूरोप के, ये एक पत्नी को रखते थे और पत्नी के अलावा बहुत से ऐसी स्त्रियों को रखते थे जिनके साथ वो शारीरिक संबंध रखते थे, पत्नी को छोड़कर अन्य स्त्रियों के साथ जो शारीरिक संबंध रखते थे उन स्त्रियों को वो लोग क्या बोलते थे आप जानते हैं? मिस्ट्रेस, जिसको हमारी देसी भाषा में कहेंगे रखेल, वो लोग उसको कहते थे मिस्ट्रेस। और आप जानते हो वो मिस्ट्रेस का शॉर्ट फॉर्म क्या बना? तो अब से जो भी अगर मुझे कहे प्रभु जी हमारे मिसेज हैं, सही में मैं तो हैरान रह गया कि ये हम अंधाधुन किसका पालन कर रहे हैं। आप अगर डिक्शनरी में जाकर देखो, जो एब्रिज डिक्शनरी है, अनब्रिज है, उसमें अगर आप जाकर देखो तो मिस्ट्रेस का ट्रांसलेशन यही है, द किंग और अ मैन हैविंग सेक्सुअल एक्टिविटी विथ अ वुमन अदर देन द वाइफ इज कॉल्ड द मिस्ट्रेस एंड द शॉर्ट फॉर्म इज मिसेस। अब मिस्टर कौन हुआ फिर? कोई। तो ये इसने बगावत की इसके अगेंस्ट, प्लेटो के अगेंस्ट। अच्छा ये एक और शख्स बहुत इंटरेस्टिंग, इसका नाम यहां पर आप पढ़ सकते हो, विलियम बैंटिंग। तो ये अंडरटेकर कहते हैं, फ्यूनरल डायरेक्टर, मतलब ये सब वो जो मुर्दे होते हैं, मुर्दों को सजा के फिर उनको दफनाना, ये वो काम किया करता था, ये ब्रिटिशर था ये। तो इसको भेजा गया कि तू भारत में जाकर ये जो सती प्रथा है इनकी, ये सती प्रथा क्या है जाकर देख कर। तभी देखो सती को लेकर कितना बवाल खड़ा कर रखा है मीडिया ने, ये वो लेकर। तो इसने रिपोर्ट किया, इसने कहा कि वहां पर मैं देखकर आया कि वो जो अलग अलग जनजातियां हैं, कुछ 4,500 से भी ज्यादा जनजातियां हैं ये अलग अलग गांवों में भारत के। तो उसने कहा कि उसने, मैंने एक गौंड जनजाति को जाकर देखा, तो वहां पर उसने देखा कि एक विधवा हुई स्त्री, तो वो नदी के तट पर जब शव को जलाया गया, पति के शव को जलाया गया, तो उस विधवा पत्नी को बुलाया और वो विधवा पत्नी सात फेरे उसके जलते हुए शव की लेती है और हर एक फेरे में वो पूछती है कि अब मेरी जिम्मेदारी कौन लेगा। तो यदि पुत्र है तो पुत्र कह देगा पहले फेरे में कि मैं मेरी विधवा मां की जिम्मेदारी लूंगा, तो उसका फेरा वहीं पे खत्म, वो फिर उसके साथ चली जाएगी। यदि उस फेरे में किसी ने जिम्मेदारी नहीं ली तो दूसरा फेरा लेती हो और दूसरे फेरे में पूछती है कि क्या इस गांव के जो प्रमुख हैं, पंचायत के हैं, वो मेरी जिम्मेदारी लेंगे। वो लोग अगर बोल दिए तो ठीक है, नहीं तो फिर वो तीसरा, ऐसे करके वो अलग अलग लोगों से पूछती है। और फिर यदि किसी ने उसकी जिम्मेदारी नहीं ली तो सात फेरे वो अपने पति के जलते हुए शव का लेने के पश्चात फिर वो गांव छोड़कर जाती है किसी दूसरे बगल वाले गांव में, और फिर वो लोग कहते हैं कि ये सती हो गई। ये कौन कह रहा है? वो सती हो गई और वो दूसरे गांव में जाकर फिर वहां का जो मंदिर है, जो प्रमुख मंदिर है, जो मंदिर वहां पर वहां के गांव के प्रमुख चलाते हैं, उस मंदिर में डायरेक्टली भगवान के शरण लेकर वो अपना जिंदगी, बाकी की जिंदगी बिताती। तो उसने बताया, तो ये पूरा जो मिसकंसेप्शन खड़ा किया गया इसने क्लियर किया ये सब क्या है वहां पर। अब 1840 से लेके 1940 ब्रिटिशर्स ने क्या किया, डिस्ट्रॉयड ऑल आर गुरुकुल्स इन 100 इयर्स. तब फिर मैकॉले को हाउस ऑफ कॉमन्स ने पूछा कि भाई अब तुम बताओ कि अब हम, ये तो तुम इतना गुणगान कर रहे हो इस भारत का, तो इस भारत के ऊपर तो हमको निसंदेह ही हुकूमत करनी है, लेकिन हम करें कैसे. तब फिर मैकॉले ने कहा कि भारत की यदि समृद्धि कम करो तो उनके ऊपर हुकूमत कर सकते हो, उनका ऐश्वर्य उनकी समृद्धि छिपी है इनके गुरुकुल सिस्टम के अंदर, तो इनका गुरुकुल सिस्टम एबॉलिश करना है. तो 1840 से 1940 तक ब्रिटिशर्स ने बुलडोजर ला ला के सारे गुरुकुल नष्ट किए. जो आचार्य गुरु थे उनके हाथ काट दिए, उनकी उंगलियां काट दी, जो प्रशिक्षित थे उनको अंधा कर दिया, उनको लूला लंगड़ा कर दिया, ये सब कुछ उन्होंने 100 वर्ष तक किया अंग्रेजों ने. और उसके पश्चात फिर 1858 के उसी के दौरान वो सब डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, उसी के दौरान 1858 में उन्होंने इंडियन एजुकेशन एक्ट, मैकॉले, विलियम एडम और बाकी रॉबर्ट क्लाइव ये सब समन्वय से उन्होंने इंडियन एजुकेशन एक्ट शुरू किया. और इंडियन एजुकेशन एक्ट था क्या, कि जो भी विद्या संस्कृत भाषा में या लोक भाषा में, चाहे वो तमिल हो, चाहे तेलुगु हो, चाहे वो मलयालम हो, कोई भी भाषा हो, संस्कृत में गैर कानूनी, कोई भी प्रकार की शिक्षा लोकल लैंग्वेज में देना गैर कानूनी है. एक ही मीडियम, खाली इंग्लिश मीडियम होना चाहिए, बाकी कोई भी मीडियम गैर कानूनी. तो मीडियम बदल दिया. तो अब अभी वो बच्चों को वो लोग डाले कहां पर, तो इसने मैकॉले ने क्या, उसने रूल निकाला कि ईस्ट इंडिया कंपनी जब आई तो ईस्ट इंडिया कंपनी में जिसको नौकरी चाहिए, तो वो लोग नौकरी दे रहे थे, लेकिन कंडीशन क्या रखा कि तुम्हारे बच्चों को हमारे स्कूल में भेजना है. अब हम अब आगे देखेंगे कि ये जो ब्रिटिशर्स ने स्कूल चालू किए वो स्कूल क्या थे जो अब तक हैं, और उनकी परिभाषा क्या है, और हम कितने अज्ञान में हैं ये ब्रिटिशर्स द्वारा दिए गए स्कूलों के बारे में. तो ये रूल मैकॉले ने निकाल दिया. तो उसने इंट्रोड्यूस क्या किया, जिसको आज हम कहते हैं कॉन्वेंट स्कूल. अब आप थोड़ा कान खोल लीजिए सुनने के लिए कि ये कॉन्वेंट स्कूल, ये क्या है कॉन्वेंट स्कूल. जैसे कि यहां पर ये आप चित्र देख रहे हो, एस्टैब्लिश 1904 रोजरी कॉन्वेंट हाई स्कूल. अच्छा, ये जो कॉन्वेंट शब्द है, ये कॉन्वेंट शब्द आता है कि ब्रिटेन में वहां पर जब कोई पत्नी तलाक देती किसी को, तलाक देने के पश्चात जब वो दूसरी शादी करती तो पहले पति से जो उसके बच्चे, एक बच्चा या दो बच्चा, कितने भी बच्चे उसके, अब वो तो उसके साथ जाएंगे ना जब दूसरी शादी कर रही हो तलाक के पश्चात. तो अक्सर होता क्या था, अब ये जो दूसरा पति है ये इस महिला के पहले पति के बच्चों को नहीं स्वीकार करता था. तो बच्चे जाएंगे कहां, उनकी तादाद बढ़ती गई क्योंकि तलाक बढ़ता गया, दूसरी शादी बढ़ती गई. तो ये बच्चे कि जिनको अब ये नया पिता स्वीकार नहीं कर रहा, ये बच्चे जाएंगे कहां, तो इनको ये भेजते थे एक जगह पर जिसको वो कहते थे कॉन्वेंट. कहां भेजते थे ये चर्च का ही एक अलग रूप, वहां पर उसको वो नाम देते थे ये कॉन्वेंट. तो वो बच्चों को जिनका अभी मतलब जो लावारिस हैं, जो अनाथ हैं, तो कॉन्वेंट का हिंदी अनुवाद क्या है, लावारिस अनाथ बच्चों का समूह, ये है कॉन्वेंट. तो अब जैसे यहां पर इस चित्र में आप देखो, तो उन्होंने क्या किया है कि सब कुछ इस कॉन्वेंट स्कूल में बदलना शुरू किया कि भाई तुम ये नमस्कार ये सब कुछ नहीं, सीधा ये सब करना चाहिए तुमको, हाय हेलो ये सब कुछ शुरू किया। और इतने सारे कॉन्वेंट शुरू किए। अब देखो कि बहुत इंटरेस्टिंग बात, मैं ये जो कॉन्वेंट का कॉन्सेप्ट है कि सबसे पहले इसकी शुरुआत, इसकी नींव क्या है, मतलब कौन किस प्रकार के बच्चे यहां पर भेजे जा रहे हैं, पहले वो देखो। और उसके पश्चात फिर अगर आप फैक्ट्स देखोगे तो बहुत इंटरेस्टिंग मुझे समझ में आया। अब देखो कि वहां के जो शिक्षक या प्रिंसिपल उनको क्या कहते हैं, फादर क्यों कहते हैं, क्योंकि उन बच्चों का फादर का आता पता नहीं है। तो ब्रिटेन में जब कॉन्वेंट स्कूल खोले गए तो वो बच्चों को किसी को तो उनको बुलाना है ना फादर, तो जो वहां का प्रिंसिपल उस स्कूल का, जो वहां का उनके शिक्षक हैं वो प्रीस्ट के रूप में, तो वो लोग को लोग फिर बोलते थे भाई आपको ही फादर बुला लेंगे। अच्छा, इसके विषय में मैं और थोड़ा गहराई से सोचने लगा। अब आप देखिए कि इंडिया में हमारी भारतीय संस्कृति में किसी बालक के दो माताएं देखी हैं आपने, है ना, जैसे भगवान कृष्ण की दो माताएं, एक देवकी और यशोदा, प्रभु रामचंद्र जी की तीन माताएं, तो एक बच्चे की कई माताएं देखी है, लेकिन एक बच्चे के कई पिता। तो यहां पे क्या हो गया कि वो बच्चा जो कॉन्वेंट में इसको फादर बोल रहा है, उसका एक फादर भी है कहीं और, है कि नहीं, उसका कहीं फादर भी है, अब इसको भी फादर बोल रहा है, तो इसके दो फादर हो गए ना। तो अंग्रेजी की एक गाली है, जो बच्चे के एक से ज्यादा बाप हो उसको अंग्रेजी में कहते हैं बास्टर्ड। बहुत ही सुनने में ये गाली बहुत अखरती है, लेकिन इसका मतलब यही है, वो बच्चा जिसका एक से ज्यादा पिता हो। तो अब कॉन्वेंट में जो जा रहे हैं, और हम बहुत फक्र से कहते हैं कि हमारा बच्चा जेवियर्स कॉन्वेंट में जा रहा है, हमारा बच्चा सेंट मेरी कॉन्वेंट में जा रहा है। अच्छा, इतना ही नहीं, अब देखिए जब इन्होंने ये कॉन्वेंट स्कूल शुरू किए ब्रिटिशर्स ने मैकॉले के निर्देशन में, तो टेक्स्ट बुक में उन्होंने पढ़ाना शुरू किया कि भगत सिंह, मंगल पांडे, चंद्रशेखर आजाद, ये सब कौन थे, आतंकवादी थे, टेक्स्ट बुक्स में था ये सब आतंकवादी थे, रंजीत सिंह जो कि सिखों के धार्मिक गुरु, उनको ये बहुत बड़ा आतंकवादी, वहां पर टेक्स्ट बुक्स में बच्चों को, हिंदू बच्चों को बताने लगे कि ये सब आतंकवादी थे, इन्होंने ऐसे ऐसे सब हिंसा करवाई, तो ये सब कुछ सिखाना शुरू किया। अच्छा, इतना ही नहीं, ये तो बहुत ही एक इंटरेस्टिंग चीज पता लगी मुझे कि वो फिर धीरे धीरे क्रिश्चियनिटी को एक कॉन्वेंट स्कूल के द्वारा हिंदू बच्चों के ऊपर थोपने लगे। ठीक है भाई, आपकी क्रिश्चियनिटी है, आप उसको अच्छे से पालन करो, हम भी रिस्पेक्ट करते हैं जीसस क्राइस्ट को, लेकिन जब उसको थोपने लगे, और किस प्रकार से थोपने लगे, एक नमूना मैं आपको पेश करता हूं उसका। ये क्या किया करते थे कि जो स्कूल की बस, अब स्कूलों को ये घरों से बहुत दूर खड़ा करते थे ताकि जो बच्चे हैं वो जल्दी पैदल चलकर कॉन्वेंट स्कूल नहीं पहुंच पाए, इसलिए दूर होने चाहिए। तो ये क्या, ये जो कॉन्वेंट स्कूल है ये बसेस प्रोवाइड करेंगे। तो अब ये बसेस में बच्चे, तो बसेस में ये लोग क्या करते थे कि वो जो ड्राइवर होता था, ड्राइवर को कहते थे कि भाई हम जब बोलेंगे तभी तू गाड़ी चालू करना, तभी तू बस चालू करना। तो जो भी उनका फादर, अच्छा अच्छा जो नन होती थी उनको मदर बोलते हैं, वो प्रिस्ट को फादर और वो नन को मदर, तो वो बस के अंदर होगी, और फिर वो हिंदू बच्चे जितने हैं उनको पूछती थी कि बताओ तुम हनुमान चालीसा गाते हो, तो लोग हम गाते हैं हनुमान चालीसा, चलो फिर हनुमान चालीसा गाओ, देखते हैं आपके हनुमान जी बस चालू करते हैं क्या। तो वो लोग जय हनुमान ज्ञान गुण सागर शुरू करते थे, और ये ड्राइवर को बोल दिया बस चालू नहीं करनी। तो बस नहीं चालू कर रहा है। छोटे छोटे बच्चे हनुमान चालीसा गा रहे हैं, बस चालू नहीं हो रही। फिर वो कहते हैं अब तुम जीसस का नाम लो। तो फिर वो कैसे ले, वो बताते हैं ऐसे ऐसे जीसस का नाम लो, आंख बंद करो हाथ जोड़ के जीसस का नाम। तो जीसस का नाम लेते यहां पर वो बोलता है चालू कर चालू, तो बस चालू देख जीसस ने चालू कराई। हनुमान जी किस काम के आपके, सोचिए ये कोई तरीका है। जैसे हमारी जो मूर्तियां होती हैं सब अष्ट धातु की बनी हुई, तो अष्ट धातु की राम की मूर्ति, हनुमान जी की मूर्ति, कृष्ण की मूर्ति, ये सब मूर्ति लाकर वो लोग एक एक, एक एक टब के अंदर पानी रखते थे और फिर कहते थे कि अभी बताओ कि आपके ये रामचंद्र जी, आपके ये भगवान कृष्ण इसमें तैर पाएंगे। अभी भाई तुमने मेटल की मूर्ति लाई हो तो वहां पर पानी के अंदर थोड़ी कोई तैरेंगे। फिर वो जीसस क्राइस्ट के लकड़ी की मूर्ति लाएंगे, बोले देखो ये कैसे तैरते हैं। अरे भाई फिर वो क्या कैसे कहते थे कि अरे भाई जो भगवान खुद ही डूब रहे हैं वो तुमको क्या बचाएंगे। सो दीज वर द चीप वेज हाउ ब्रिटिशर्स वर ट्राइंग टू प्रोपगेट क्रिश्चियनिटी, फोर्सिंग क्रिश्चियनिटी थ्रू दीज कॉन्वेंट स्कूल्स। और इसलिए मैकॉले ने कहा था, मैकॉले ने कहा कि आप उनको नॉलेज नहीं दे पाओगे, उनके पास बहुत नॉलेज है, हमसे ज्यादा नॉलेज है, आप उनका कल्चर चेंज करो। उनका आप कल्चर चेंज कर दोगे अपने आप वो अपने नॉलेज को बहुत ही गिरा हुआ घटिया मानने लग जाएंगे। सो यू कैन चेंज एंड यू हैव टू चेंज देयर कल्चर, ये मैकॉले ने हाउस ऑफ कॉमन्स में कहा। तो फिर किस प्रकार का कॉन्वेंट स्कूल में वो कल्चर शुरू किए सिखाना, सबसे पहले उन्होंने शुरू किया ये कहते हैं आज दिन तक जो चल रहा है वैलेंटाइंस डे। अब ये वैलेंटाइंस डे है क्या, क्या मतलब है ये वैलेंटाइंस डे का हम भारतीयों से, क्या है ये वैलेंटाइंस डे? कि एक सेंट वैलेंटाइन था वो 14वीं सदी में, तो ये सेंट वैलेंटाइंस इसके ऊपर जो राजा था क्लॉडियस, क्लॉडियस नाम का एक राजा था, और ये क्लॉडियस नाम का राजा इतना बेशरम राजा था कि ये सब जगह इसने रूल बना दिया था कि अनैतिक संबंध सब कोई कर सकता है। तो सेंट वैलेंटाइन उसको ये ठीक नहीं लगा, सेंट वैलेंटाइन ने हमारे भारतीय ग्रंथ पढ़े थे तो उसने प्रीचिंग शुरू किया कि नहीं भाई आप विवाह में आओ एक साथ, यहां से संस्कृति पढ़कर गया और उसने जाके प्रोपोगेट किया कि जो भी कोई विवाह में, और उसने ग्लोरीज बताया कि विवाह में आकर संबंध स्थापित करने से क्या क्या होता है, तो उसने फिर वो ग्लोरीज बताया उसके। तो क्लॉडियस ने सेंट वैलेंटाइन को एक थ्रेट माना और 14 फरवरी 1498 उस दिन सेंट वैलेंटाइन्स को मरवा दिया। किसने? क्लॉडियस ने। तो अब 14 फरवरी 1498 को सेंट वैलेंटाइन्स को जो खत्म कर दिया, हमको उससे क्या लेना देना है? तो यहां पर अब देखो वैलेंटाइन्स कि उसके याद में वैलेंटाइन्स मनाया जा रहा है, और हम लोग इतने मूर्ख बन रहे हैं ये पाश्चात्य संस्कृति में कि मैं कई बार देखता हूं कि घरों में बेटा अपनी मां को कहता है कार्ड देकर विल यू बिकम माय वैलेंटाइन। भाई कोई अकल है, कोई दिमाग है किस लिए तू क्या कार्ड दे रहा है, किसको दे रहा है, क्या बोल के दे रहा है विल यू बिकम माय वैलेंटाइन। तो उस समय ये क्लॉडियस ने शुरू किया था ये जो आजकल लिव इन रिलेशनशिप, ये उसने उस समय 14th सेंचुरी में शुरू कर दिया था क्लॉडियस ने। है क्या लिव इन रिलेशनशिप? बस रहो एक साथ, मौज मस्ती करो और कोई उत्तरदायित्व लेने का जरूरत नहीं। जैसे आप देखते हो ना कुत्ते एक एक गली में घूमते रहते हैं, गली बदलते रहते हैं, कभी ये गली कभी वो गली, और उनका खानदान का एक नमूना सब गलियों में होता है। अच्छा इतना ही नहीं, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज, ये जो मदर्स डे होता है, सुना होगा ना आपने मदर्स डे, ये मदर्स डे इन्होंने शुरू किया कॉन्वेंट स्कूल में। मदर्स डे है क्या कि वहां पर जब कॉन्वेंट शुरू हुआ, आप कॉन्वेंट तो आप समझ गए लावारिस अनाथ बच्चों का समूह, वो है कॉन्वेंट। तो अब वहां पर ये बच्चे, इनको मां का दूध नहीं मिलता था, कई बच्चे ऐसे थे कि जिनको मां का दूध नहीं मिलता था पीने के लिए, तो उनको वो लोग मिल्क पाउडर इत्यादि जो भी सब्स्टिट्यूट दे देते थे। तो साल में एक बार जो इनकी बायोलॉजिकल मदर है वो उनको अपना दूध पिलाती थी साल में एक बार, और उसको वो कहते थे मदर्स डे। सोचो। अच्छा इतना ही नहीं, फिर फादर्स डे, आपने ऑब्जर्व किया ये हॉलीवुड में जो मूवी निकली एक बार मम्मी, आपको पता है टेक्निकल मम्मी का मतलब क्या होता है? वो इजिप्ट के जो पिरामिड्स हैं वहां पर उन्होंने इतने पुराने जो उनके मुर्दे, उन मुर्दों को प्रिजर्व करके जो रखते हैं उसको मम्मी कहते हैं। और डैडी कौन है फिर? मुर्दे जैसा। हाँ ये उनका टेक्निकल मतलब है, मम्मी और डैडी, डेड से डैडी, मुर्दे जैसा। इसलिए उनके पिक्चरों का नाम देखो मम्मी, कोई भी पिक्चर का नाम डैडी नहीं, क्योंकि उसका आता पता ही नहीं। तो मम्मी पिक्चर है, फिर मम्मी रिटर्न्स। तो फादर्स डे क्या था कि साल में एक बार वो जो बच्चा वो अपने एक्चुअल फादर के घर जाकर वो जब डिनर लेगा तो एक उसको अनुभव दिया जाता था कि तू अपने एक्चुअल फादर के साथ साल में एक बार बैठ के डिनर ले सकता। तो जिस दिन वो अपने बायोलॉजिकल फादर के साथ बैठकर डिनर लिया करता था साल में एक बार, उसको उन्होंने कह दिया फादर्स डे। और हम लोग अंधाधुंध मना रहे हैं मदर्स डे। अरे हमारी भारतीय संस्कृति में हर दिन मदर्स डे है। मात्र पितृ देवो भव, क्या कहते हैं हम लोग? गुरुर ब्रह्म गुरुर, सब कुछ उनको हम अपना गुरु मानते हैं, माता पिता सबको। ये जो टीचर्स डे साल में एक बार मनाओ, अरे भाई जो विद्यार्थी वो तो गुरु को, वो आचार्य को, वो कुलपति को वो हर दिन पूछता था, हर दिन पैर छूते। ये साल में एक बार नहीं कि एक बार निकाल दिया कि साल में एक बार भाई उनको टीचर, और साल में एक बार वो मदर्स डे और फादर्स डे। तो ये सारा मैकॉले ने कहा कि इस प्रकार का जो हमारा कॉन्वेंट का वहां का कल्चर है उसको यहां पर लेकर आओ। और हम देखते हैं कि हमारे भगवान साक्षात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी, उन्होंने अपने उदाहरण से, स्वयं के उदाहरण से, जो कि सारे विद्याओं के स्रोत हैं, विद्या वधु जीवनम भगवान के विषय में कहा गया है, वो भगवान स्वयं आकर हमें क्या सिखाए कि कैसे गुरु के गुरुकुल में जाकर हमें ये विद्या प्राप्त करनी है, और ये विद्या प्राप्त करने के पश्चात अपने स्वयं के मनुष्य जीवन का उद्धार करना है, और उसके साथ साथ जो संकल्प विद्यार्थी लिया करते थे वो संकल्प स्वयं कृष्ण बलराम उन्होंने भी लिया सांदीपनी मुनि के आश्रम में, कि फिर समाज हेतु, समाज के हित हेतु उन्होंने समाज उपयोगी उस विद्या का योगदान दिया। तो यहां पर हम केवल आपको एक नमूना दे रहे हैं कि जो हमारा गुरुकुल सिस्टम, इतना एडवांस्ड गुरुकुल सिस्टम, वो क्या था और अब क्या हो गया है। मुझे तो बोलते भी शर्म आती है कि मुझे कुछ डिवोटीज बोल रहे थे कि यहां पर नासिक में ऐसे कॉन्वेंट स्कूल हैं जहां पर ये रूल, स्कूल अथॉरिटीज ने ये रूल निकाला है कि जो लड़कियां हैं वो स्कर्ट घुटनों से ऊपर पहनेंगी, ये स्कूल का यूनिफॉर्म है कि उनके स्कर्ट घुटनों से ऊपर होने चाहिए। अगर ऐसे स्कूलों में और ऐसे वहां के अथॉरिटीज अगर ये रूल्स निकाल रहे हैं, इस प्रकार के रूल्स, तो क्या संस्कार बच्चों को दिए जा रहे हैं फिर? और फिर हम फक्र कर रहे हैं कि हमारा बच्चा जो है वो फलाने कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ रहा है, वो इंग्लिश मीडियम में ये सीख रहा है, वो सीख रहा है। लेकिन इस सब की शुरुआत जो मैंने आपको इस डेढ़ घंटे के इस छोटे से प्रेजेंटेशन में आपको दी, जो कि मैकॉले ने, विलियम एडम ने हमारे भारतीय संस्कृति, भारतीय शिक्षा प्रणाली, ये सब को देखकर उसने जो प्रेजेंटेशन हाउस ऑफ कॉमन्स में 1835 में दी, उसके सारे प्रमाण और ये सारे दस्तावेज यहां पर हैं। तो अब हम निर्णय ले सकते हैं कि हमको हमारे बच्चों को क्या देना है। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।
हरे कृष्णा, वो सूचना इस प्रकार से है, जैसे हमारा जो कुंभ मेला का जो पंडाल का काम का शुरुआत हो गई है, तो जो भी भक्तों को आपके रिलेटिव्स को अगर फोन आ रहे हैं आपको कि रहने की व्यवस्था किधर है, तो हमारा जो इस्कॉन नासिक कुंभ मेला साइट है उसके ऊपर आप वो वेबसाइट पे देख सकते हैं, और अद्वैत कृष्ण प्रभु जो जुहू मंदिर से है वो उसके कोऑर्डिनेटर है, और नासिक से अगर आपको अधिक जानकारी चाहिए कुंभ मेला एकोमोडेशन की तो श्रीमान जयरकर प्रभु से आप संपर्क कर सकते हैं और उनसे वो जानकारी आप ले सकते हैं। और अभी जन्माष्टमी कुंभ मेला की कई सारे सेवा है, तो जो भी भक्तों को सेवा अर्पण करनी है, कुछ भी सेवा देनी है, तो उसके लिए आप सहस्त्र शीर्ष प्रभु यहाँ पे रहेंगे, जो भी हमारे 3 महीने के लिए सर्विस इंचार्ज है आप इनसे संपर्क कर सकते हैं। आने वाले जन्माष्टमी को जो भी माताएं भोगा लेके आती है उनके लिए सूचना कि जब जन्माष्टमी के दिन आप यहाँ पे भोगा लेके आएंगे तो जो भी भोगा ड्राई या जो टिकने वाला होगा जो खराब नहीं होता है उसको आपको एक दिन पहले लेके आना है, मतलब 4 सितंबर को लेके आना है, और वो भोगा आपको 4 सितंबर को अंतरंगा शक्ति माता जी जो है उनके पास सबमिट करना है। और जो भी ऐसे भोग है जो आपको दिए जाएंगे कि जो खराब होते हैं जो उस दिन आपको लाना है, तो वो भी आप माता जी के पास 5 सितंबर को सबमिट कर सकते हैं ताकि उसकी अरेंजमेंट और भगवान को ऑफरिंग अच्छे तरीके से हो। जो भी भक्तों ने लक्ष्मी कलेक्शन के लिए जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में रिसीट बुक्स लिए हैं उनको अनुरोध है कि जो भी फंड या लक्ष्मी आपके पास जमा हुई है कृपया उसको आप अकाउंट्स पर सबमिट कीजिए ताकि एक आंकड़ा जो है वो मंदिर के अकाउंट्स को पता चले। और जो भी भक्त मंदिर के आजू बाजू में रह रहे हैं, अगर आपके घर में एक रूम एक्स्ट्रा है या 2 लोगों को आप सुला सकते हैं, तो कई सारे गेस्ट कुंभ मेला के लिए यहाँ पे आने वाले हैं, तो जो भी भक्त अपने घर का एक रूम स्पेयर कर सकते हैं इन सब वैष्णवों की सेवा के लिए, तो वो भी हमारे श्रीमान जयकर प्रभु है जो ऊपर बैठे उनसे संपर्क कर सकते हैं और आपका नाम और नंबर दे सकते हैं, खास करके जो नजदीक रह रहे हैं वो। और 4 तारीख को जो जन्माष्टमी, 5 तारीख को होगा, तो 4 तारीख को हमारा कल्चरल फेस्टिवल है, तो इस कल्चरल फेस्टिवल में हमने 3 घंटे का एक कल्चरल शो रखा हमारे पंडाल में, तो जो भी एक्सपर्ट्स और प्रोफेशनल आर्टिस्ट है जो डांस या ड्रामा या म्यूजिक में और उनको परफॉर्म करना है, तो उसके नाम आप हमारे श्री वृंदावन प्रसाद प्रभु को दे सकते हैं। वृंदावन प्रसाद प्रभु यहाँ पे है कहीं, तो आप उनको नाम दे सकते हैं ताकि उनका ऑडिशन लिया जाएगा और उसके बाद में वो नाम दे सकते हैं। तो जो भी भक्त आज हमारे मंदिर में इस सत्संग कार्यक्रम के लिए पहली बार आए हैं उनको अनुरोध करते हैं केवल 2 मिनट के लिए अपने जगह पे खड़े हो जाइए। जो भी भक्त हमारे सत्संग कार्यक्रम में पहली बार आए हैं केवल 2 मिनट के लिए अपने जगह पे खड़े हो जाइए। तो बहुत बहुत धन्यवाद, अब आप सबका कीमती समय निकाल के हमारे मंदिर में पधारे। हम यही प्रार्थना करते हैं श्री श्री राधा मदन गोपाल जी, गोरीदास प्रभुपाल जी और सारे वैष्णव से कि आप वास्तविक विद्यार्थी बने, स्टूडेंट न बने, और जो असली विद्या है हमारे भारत की संस्कृति की वो आपके जीवन में आपके परिवार में फैले और आने वाले सारी पीढ़ियों को मिले। तो इन सबको हम धन्यवाद देंगे और स्वागत करेंगे 3 बार जोर से हरि बोल बोल के, हरि बोल हरि बोल हरि बोल। तो कृपया अपने जगह पे बैठ जाइए। तो जो भी भक्त पहली बार आए जो खड़े हुए थे उनके लिए सूचना, अभी यहाँ पे संकीर्तन होगा और उसके बाद सबके लिए बाहर महाप्रसाद होगा। तो जो पहली बार आए तो महाप्रसाद लेने से पहले पीछे हमारा अतिथि सेवा काउंटर होगा, तो जो पहली बार आते उनके लिए विशेष गिफ्ट होता है उस उपहार को आप स्वीकार कीजिए और फिर प्रसाद के लिए आप बाहर जा सकते हैं। हरे कृष्ण।
जय श्री राधा मदन गोपाल ललिता विशाखा देवी की। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम, हरे राम, हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे Hare Rama, Hare Rama.
हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे राधेश्याम हे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे अद्भुतम हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
विशाखा देवी की श्री श्री निदाय गौर चंद्र की शिला प्रभुपाद की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की निदाय गौर प्रेमानंदी
महाप्रसादे गोविंदे नाम ब्राह्मण वैष्णवे स्वल्प पुण्यवतम राजन विश्वासो नैव जायते शरीर विद्या जाल जड़ेन्द्रिय ताहे का जीवे फेले विषय सागरे तार मधे जिवारती लोभो मय सुडुर्मती ताके जेता कठिन संसारे कृष्ण बड़ दया मा पोरी बार है जीव हजार स्वप्रसाद न दिलो भा संयन अमृत पाओ श्री श्री राधा कृष्ण गुण गाओ निमिड़ा को श्री चैतन्य निता जय श्री श्री राधा मदन गोपाल ललिता विशाखा निताय गौर चंद्र महाप्रसादम की जय।